कितना मधुर मधुर है मधुबन, कितना मधुर मधुर है। सदा ये आँखों में छाया है, सदा ये आँखों में छाया है। दिल वाला मधुबन का बाबा, दिल वाला मधुबन का बाबा, दिल में समाया है। मधुबन कितना मधुर मधुर है, मधुबन कितना मधुर मधुर है।
शांति। आप सभी बाबा के मधुबन घर में श्री कृष्ण की जन्माष्टमी मनाने के लिए पहुंचे हो। ये भी बहुत सुंदर यादगार त्योहार है। भगत लोग तो आज की रात में मना रहे हैं, कहीं कहीं आज जन्माष्टमी मनाई जा रही है, कल भी कई स्थानों पर कल मनाएंगे। ये यादगार त्योहार बाबा ने हम सभी को श्री कृष्ण की पूरी जीवन कहानी स्पष्ट बता दी, इसलिए हम सभी ज्ञानी तु आत्माएं पूरी बायोग्राफी को जानती हैं। जानते हो सभी, मालूम पड़ गया महात्माओं को, मालूम है श्री कृष्ण कौन है, कब आया, कब आएगा, मालूम है ना। हमारे ज्ञान के कोर्स में बात सबको बताई जाती ही है, कैसे फर्स्ट आत्मा श्री कृष्ण की, सतयुग का फर्स्ट प्रिंस, भक्तों ने तो द्वापर में मान लिया, भले उसकी महिमा में कहा 16 कला संपूर्ण है, संपूर्ण निर्विकारी है, महिमा सर्वोच्च की है, बहुत ऊंची महिमा की है, श्री राम से भी ज्यादा महिमा की है। श्री राम की महिमा में 14 कला कही है। 14 कला पहले आएगा या 16 कला पहले आएगा, यही भक्तों को पता नहीं। तो बाबा ने हम सबको बहुत स्पष्ट ज्ञान दिया, इसलिए मूंझते नहीं हम। और जो भी मनाते हैं भक्ति के यादगार भी अगर हम मनाते हैं तो अर्थ सहित मनाते हैं, जानते हैं कैसे इस सृष्टि मंच पर नंबर 1 वैकुंठ नाथ श्री कृष्ण ने सतयुग के अंदर अपना पार्ट प्ले किया था, और अब वो दिन फिर से आए कि आए, कलयुग की रात पूरी होगी और हमारी नई दुनिया आएगी, दिन आएगा और उसमें फिर से वो श्री कृष्ण, कौन श्री कृष्ण है, कहाँ है अभी आत्मा, वो माताएं बताओ अभी वो आत्मा कहाँ है, कहाँ है, मालूम है, कुछ बता रहे हैं कुछ चुप हैं, कहाँ है, समय मिले हो आप उसे, मिले हो नहीं, जो मिले हाथ उठाओ, नहीं मिले, माताएं मिली नहीं है, अच्छा अभी नहीं मिली है, मिलेंगी, अच्छा अभी तक भी बाबा का अव्यक्त पाठ चल रहा है। और हम सब जानते हैं जो श्री कृष्ण की नंबर 1 आत्मा है वही ब्रह्मा की आत्मा लास्ट में बनी, और उसी रथ को बाबा ने चुना, शिव परमात्मा ने उसको ही अपना माध्यम बनाया, और उसी माध्यम में प्रवेश करके उसको ज्ञान दे करके फिर से वैसा बन जाए, श्याम से सुंदर बन जाए, पूरे उसके जन्मों का वृतांत बताया, तुम ही सुंदर थे, तुम ही श्याम बने। श्याम सुंदर को एक जन्म में नहीं बन गया, 84 जन्मों की कहानी सुना दी कि जो श्रेष्ठ सुंदर सत्व प्रधान आत्मा थी, सतयुग के अंदर पूज्य आत्मा थी, परम पवित्र थी, वही आत्मा पुनर्जन्म लेते लेते सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग के चक्कर में आई, पहले आधा कल्प सुंदर सतयुग त्रेता के अंदर संपूर्ण पावन थी, सुंदर थी, और फिर द्वापर और कलयुग में जब पतित बनी, विकारी बनी, तो श्याम बन गई। सर्प ने डस लिया। कौन से सर्प ने डसा? विकारों के सर्प ने डस लिया द्वापर से। तो वो सुंदर थी, वो श्याम बन गई। और अभी फिर से बाबा ने उस रथ को चुना और कहा, तू अपने जन्मों को नहीं जानता। कहा ना गीता में, तू अपने जन्मों को नहीं जानता। किसको कहा? अर्जुन को कहा। अर्जुन कौन है? ब्रह्मा बाबा की आत्मा। जो टेसो अर्जुन, हे अर्जुन नंबर वन। तो उस आत्मा को बताया कि तुम कौन थे, तुम क्या बन गए, फिर तुमको क्या बनना है। तो अभी वो अपनी संपूर्ण स्टेज में हम बच्चों की सेवा पर है, गया नहीं। अभी गेट खोलेगा, ये आत्मा ही निमित्त बनेगी, और जब जाएगा तो अपने बच्चों को साथ लेकर के जाएगा। अभी सूक्ष्म वतन में हम सबका इंतजार कर रहा है। तो अभी हम सभी उसके इंतजार को पूरा करेंगे कि नहीं? चाहते हैं श्री कृष्ण पूरी जल्दी आए, कि संगम युग बहुत अच्छा है। संगम युग पर तो हम भगवान से मिलते हैं, भगवान के साथ खाते पीते रहते उठते बैठते। सतयुग में तो बाबा नहीं मिलेगा ना, शिव बाबा नहीं मिलेगा ना, फिर कौन सा युग अच्छा? संगम युग या सतयुग? देखो, कोई बोले सतयुग, कोई बोले संगम युग। सतयुग तो अच्छा है ही, जिसकी स्थापना हम सभी कर रहे हैं, लेकिन संगम युग कम नहीं है। बहुत बहुत भाग्यवान आत्माएं हैं जो भगवान से डायरेक्ट मिलती हैं, उसकी छत्र छाया का अनुभव करती हैं, उसकी शिक्षाओं में पलती हैं। तो संगम युग पर हम सभी बहुत बहुत भाग्यवान हीरे तुल्य आत्माएं हैं, जिनको बाबा ने सेलेक्ट किया है, चुना है। इतनी करोड़ों आत्माओं में से थोड़ी सी आत्माओं को चुन लिया और कहा, ये मेरे पुराने भगत हैं। अब भक्ति नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये भगत पुराने हैं, जिस पर नजर पड़ी। सब पर नहीं पड़ी, जो पुराने पुराने भगत थे ना, बहुत भक्ति की, पहले शिव बाबा की, अब व्यभिचारी भक्ति की, और कलयुग के अंत में व्यभिचारी भक्ति करने लगे, देवताओं के, अपने यादगारों की पूजा की, फिर जन पांच तत्वों की पूजा की। फिर आजकल कौन सी पूजा होती है? कौन सी पूजा होती है आजकल? पेड़ पौधों के साथ साथ आपने देखा होगा, ये टिवाटा होता ना, तीन रस्ते जहाँ मिलते हैं, जहाँ तीन रस्ते मिलते हैं, वहां पर भी जाकर के माताएं पूजा करके आती हैं। कुछ न कुछ तेल चढ़ा के आएंगी, दीपक जला के आएंगी, फूल चढ़ा के आएंगी, टिवाटे की भी पूजा करने लगे। लेकिन टिवाटा की कौन सा है, टिवाटा कौन सा है? अभी बाबा कहता है, इस समय मैं तुम बच्चों को टिवाटे पर खड़ा करता हूँ, तीन रस्ते के बीच में खड़े हो इस समय। खड़े हो सभी तीन रस्ते के बीच में। जानते हो तीन रस्ते कौन से? कुमारियां बताओ, तीन रस्ते कौन से हैं? तीन रस्ते हैं, टिवाटे पर बाबा ने इस समय तुमको खड़ा किया है। एक तरफ है दुख धाम, पहले दुख धाम देखो। एक तरफ जाना हो तो जा सकते हो, टिवाटे पर खड़े हो संगम युग पर। इस समय बाबा ने सबको तीन रस्तों के बीच में खड़ा किया है। एक तरफ दुख धाम का रास्ता है, जहां पर दुख ही दुख है। आज कलयुग के अंदर क्या लगा पड़ा है? क्या है? अपार दुख है, दुख के पहाड़ गिर रहे हैं इंसान के ऊपर। न प्राकृतिक रूप में सुख है, तब तो कितना दुखी कर रहे हैं। कहीं बाढ़ें आ रही हैं, कहीं सूखे पड़ रहे हैं, कहीं कुछ नहीं है, तो अन्न खाने के लिए अच्छा नहीं है, पानी पीने के लिए ठीक नहीं मिल रहा है। पांचों तत्व अपना तमोप्रधान स्वरूप दिखा रहे हैं, और तत्व तो छोड़ो, मनुष्य आत्माओं की वृत्तियां इतनी तमो प्रधान है, पतित हैं, जो कोई सुरक्षित नहीं, कोई की सेफ्टी नहीं कहीं पर भी। कोई जा रहा रास्ते चलते, कोई मार देता है, कोई लूट लेता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई कुछ, अकाले मृत्यु हो रही, अनेक प्रकार की हत्याएं, अनेक प्रकार के अत्याचार, आतंक भय कितना है, चारों तरफ से चिंताएं कितनी है। तो दुख धाम भी बहुत अपना फोर्स में है। कहता है बाबा कि बच्चे देखो, ये दुख की दुनिया है। तो ये एक तरफ है दुख का रास्ता, विकारों का रास्ता, पतित बनने का रास्ता। अब तो वहां जाने की इच्छा नहीं होगी ना, निकल आए ना सभी, कि है अभी तक भी कोई इच्छा, बाबा ने दुख धाम से तो निकाल लिया, जिंदगी से निकाल लिया, कीचड़ से निकाल लिया, और अब एक दो रास्ते दिखा रहा है, एक है शांति धाम का रास्ता, मुक्ति का रास्ता, और दूसरा है जीवन मुक्ति का रास्ता। दो रास्ते अभी भी हैं, तो मुक्ति चाहिए या जीवन मुक्ति चाहिए या दोनों चाहिए? हाँ, क्या चाहिए? मुक्ति नहीं चाहिए, जीवन मुक्ति चाहिए सबको। मुक्ति धाम के बिना तो सदगति होगी नहीं, जीवन मुक्ति मिलेगी ही नहीं। मुक्ति धाम में जाएंगे, वाया करेंगे, ठहरेंगे नहीं, फिर आ जाएंगे, लेकिन जीवन मुक्ति में रहते हुए भी जीवन मुक्त है आत्मा, कोई भी बंधन नहीं। संबंध सब होंगे लेकिन बंधन नहीं होगा। कलयुग में जो संबंध है वो संबंध नहीं है, बंधन है। इतना बंधन है कलयुग के संबंधों में जो उसके बिना हम खा नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, रह नहीं सकते, चल नहीं सकते, बंधन हो गए। तो बाबा हम सबको कहता है, मैं आया हूँ संगम युग पर तुमको बंधन से मुक्त बनाने के लिए। दुख धाम से पहले निकाला, अभी दुख ना आए। आता तो नहीं दुख कभी, कभी दुख के आंसू नहीं आते हैं, कुछ भी हो जाए। बाबा कहता, बच्चे तुम्हें दुख के आंसू नहीं आने चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें दुख धाम से निकाल लिया है, मैं तुम्हारा सर्वशक्तिमान दुख हरता बाप साथ में हूं। तो मेरी याद में अगर रहोगे तो वो शक्ति प्राप्त हो जाएगी, जो हर बात का सामना कर सकोगे, हर परिस्थिति को पार कर सकोगे। तो संगम युग पर हम सब आत्माएं दुख से तो छूट गए, कभी कभी दुख ले लेते हैं या दुख दे भी देते हैं। बाबा कहता, न दुख दो न दुख लो, लेना भी नहीं। कई लोग देते नहीं है लेकिन ले जल्दी लेते, कोई कुछ बोल देगा, कोई कुछ कह देगा, ले लेते हैं, दुख मूड खराब कर लेते हैं, दुखी होते रहते हैं, उदास हो जाते हैं, खुशी गायब हो जाती, दुख ले लिया। बाबा कहता, बच्चे लेते क्यों? अगर मान लो आपको कोई चीज दे और आपको अच्छी नहीं लगती तो आप नहीं लो, क्यों लेते हो? तो हम सबको बाबा ने दुख की दुनिया से निकाल करके अभी दो रास्ते दिखाए हैं कि अगर केवल याद में रहोगे, सिर्फ याद में अगर रहोगे तो तुमको मुक्ति मिलेगी। सिर्फ याद करते ना, कई कहते हैं हमको तो योग बड़ा अच्छा लगता, पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं, मजा नहीं आता मुरली के अंदर, सेवा येवा क्या करनी है, हम तो बस योग करने के लिए बाबा के घर में आएंगे, आएंगे बाबा की ट्रांसलाइट के आगे बैठेंगे, शांति का अनुभव करेंगे और फिर चले जाएंगे। हमको तो शांति चाहिए, मुरली उरली मेरे को पसंद नहीं आती। तो कहाँ जाएंगे? वो आत्माएं तो नहीं है आप सभी, वो तो मुक्ति धाम में जाने वाली आत्माएं दुनिया में अनेक है। बाबा कहता है, बच्चे तुमको तो मैं जीवन में रहते मुक्ति देने वाला हूं, जीवन में रहो। जीवन से तो छुटकारा वो पाना चाहते जो डरते हैं, जीवन से डरते हैं, समझते हैं तो बहुत दुख है, बहुत बंधन है, बहुत समस्याएं हैं, इसलिए बच्चे मुझे तो मोक्ष दे दो। और बाबा कहता है, अरे बच्चे मोक्ष तो किसी को मिलता ही नहीं। मिलता है किसी को? नहीं, मिलता है, चाहिए मोक्ष माताओं को? जिसको मोक्ष चाहिए वो हाथ उठाओ। मेहसाना में एक भाई मुझे मिला था एक बार, बोला मुझे मोक्ष चाहिए। है कोई ऐसा भी? नहीं है इस ग्रुप में, है कोई ऐसा? इस नादी ड्रामा के अंदर कोई भी आत्मा को मोक्ष नहीं मिल सकता। मोक्ष मिलना माना उसके अस्तित्व को समाप्त कर देना। मुक्ति शब्द अलग है, मोक्ष अलग है। वो तो समझते हैं सागर से बुदबुदा उठा और सागर में जा करके समा जाएगा, ऐसे समझते हैं। आत्मा आई, शरीर लिया, पार्ट बजाया और फिर परमात्मा में समा जाएगी, इसलिए कह देते हैं मोक्ष हो गया। बाबा कहता, जो अनादि अविनाशी चीज है, जिसका अस्तित्व है, जो इस सृष्टि में खेल खेलने वाली, नाटक करने वाली आत्मा है, वो समा गई तो समाप्त हो गई, समाती नहीं है। प्यार में समाना अलग चीज है, सदा के लिए समा जाना अस्तित्व समाप्त हो जाना। इसलिए बाबा ने हम सबको ज्ञान दिया, बच्चे मोक्ष किसी को नहीं मिलता। नाटक में हर आत्मा को अपने अपने समय पर पार्ट प्ले करने आना ही है, हर एक को आना है, कोई छूटेगा नहीं। जितनी आत्माएं इस समय है, 5000 वर्ष के बाद इसी समय इतनी आत्माएं होंगी, विषय है ना। बाबा ने ज्ञान दिया, बहुत स्पष्ट ज्ञान दिया, इसलिए वो पार्ट में तो आएंगी, चाहे एक जन्म लें चाहे दो जन्म लें, चाहे हमारे जैसे 84 जन्म लें, पूरे चक्कर के अंदर पार्ट प्ले करें। तो हम सभी आत्माएं पूरे 84 जन्मों का पार्ट प्ले करने वाली, इसलिए हम मोक्ष नहीं मांगते, मुक्ति नहीं मांगते, हम जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करते हैं और उसी को चाहते हैं कि हमारा पद जीवन मुक्त हो जाए, जीवन में रहते मुक्त। और बाबा कहता है कि सतयुगी जीवन मुक्ति से संगम युग की जीवन मुक्ति श्रेष्ठ। इस समय अनुभव अगर नहीं करोगे तो भविष्य में मिलेगा या नहीं क्या पता, भविष्य किसने देखा। इस समय जीवन में रहते हुए हरेक जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करते हो, हैं जीवन में लेकिन बंधे हुए नहीं, कहीं भी बुद्धि का लगाव नहीं, कहीं झुकाव नहीं, कहीं आकर्षण नहीं। अगर मुक्त हैं, बंधन कोई छूट जाए किसी का, जैसे कोई अगर तोते को आप पिंजरे के अंदर रख दो और पिंजरे से छोड़ो, क्या होगा, मुक्त उड़ेगा। अगर हम आत्मा भी जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करती हैं, तो क्या एक सेकंड में इससे देह से डिटैच हो सकते हैं। अगर जीवन मुक्त स्थिति का अच्छा अनुभव है इस समय हमें, तो जीवन में रहते आत्मा इस कर्म इंद्रियों के अधीन नहीं है, अधिकारी है। तो पहला अभ्यास ही हमको बाबा करा रहा है कि बच्चे शरीर में रहो लेकिन शरीर से न्यारे होने का अभ्यास करो। जैसे बाबा आते हैं, देखा ना, प्रवेश करते हैं, अव्यक्त पाठ चलता है 4 घंटे 6 घंटे, बाबा आते हैं, मुरली सुनाते हैं, प्रवेश करते हैं और फिर जब चले जाते एक सेकंड में अलग हो जाते, कोई बंधन नहीं, कोई प्रकार का खिंचाव नहीं देखा। साकार में आए, मुरली सुनाई, बच्चों से मिले, सबको खिलाया पिलाया, बात भी की, दृष्टि भी दी, सब कुछ किया, फिर अलग हो गए। बाबा कहता तुम बच्चे भी इस देह में रहते हुए इस देह से डिटैच न्यारे होने का अभ्यास करो। जीवन है ऐसे नहीं, जीवन छोड़ दिया, जीवन से किनारा कर लिया, शरीर में है, जीवन में है, लेकिन बंधन नहीं है शरीर का, कर्मेंद्रियों का बंधन नहीं। इसीलिए ये अभ्यास कराया जाता है कि बीच बीच में अपने मन को कंट्रोल करो, तो मन ने सब बांध दिया है शरीर के अंदर, मन और कर्म इंद्रियां, इन दोनों का बहुत बहुत गहरा कनेक्शन, बहुत गहरा कनेक्शन। जो संकल्प चलता है उसी समय कर्मेंद्रियां अपना काम शुरू कर दे, उधर संकल्प उठा, माइंड ने अपना काम किया, मन चला, संकल्प ने उसको दिया, ट्यूनिंग दी और कर्म इंद्रियां सेकेंड भी नहीं लगाती, सोचती भी नहीं और काम करना शुरू कर दिया, तो मन कर्मेंद्रियों के गुलाम बन गया, था राजा लेकिन अधीन हो गया। अब बाबा हमको फिर से अभ्यास कराता, बच्चे योग में क्या करो, तुम इस मन के मालिक बन करके, आत्मा मालिक बन करके इसको चलाओ, तो इस कर्म इंद्रियों की अधीनता से मुक्त हो जाओ। कोई भी आकर्षण आपको आकर्षित नहीं करेगा, कोई भी कर्म पाप कर्म नहीं होगा। तो हम योग में क्या करते हैं, कर्म इंद्रियों को कंट्रोल करके मैं आत्मा हूं इस स्वरूप में स्थित होते हैं। और जितना जिसने अभ्यास किया है आत्मिक दृष्टि का, आत्मिक गति का, आत्मिक स्थिति में रहने का, रूहानियत में रहने का, वाणी से परे रहने का, उतना वो जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव कर सकता है। और साथ साथ कर्म में आते हुए कर्म से न्यारापन, कर्म में बहुत फंस गए ना, कई काम होते हैं, सारा दिन काम होते हैं, ये किया वो किया, बुद्धि फंसी रहती, कई बहुत बिजी होते हैं अपने अपने काम के अंदर, बिजनेस के अंदर हो या कोई नौकरी हो, इतना बिजी होते हैं जो उससे छुटकारा नहीं मिलता। आएंगे क्लास में, योग में आएंगे, मुरली सुनने आएंगे, बुद्धि बार बार वहां जाएगी, मेरा ये काम पड़ा हुआ, मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये करना था, मेरा ये काम था, आए हैं क्लास करने, आए हैं योग करने, भगवान को याद करने, क्लास में आकर के भी बुद्धि भटकती, मन भागता है, बंधन है, बंधन खींचता है। तो देखो अपने बंधनों को, कोई बंधन मुझे खींचता तो नहीं है, परिवार का बंधन है, समाज का बंधन है, नौकरी का बंधन है, संस्कारों का बंधन है, स्वभावों का बंधन है, भक्ति का बंधन है, गुरुओं का बंधन, बंधनों की लिस्ट है आपके पास है? निकाले हैं बंधन हमारे पास कितने थे, कहां कहां आत्मा फंसी हुई थी भक्ति काल के अंदर, कौन कौन से बंधन आत्मा को खींचते थे, कोई कोई को अभी तक भी भक्ति खींचती है, बंधन खींचता है, भक्ति छोड़ेंगे तो पता नहीं क्या होगा। ज्ञान तो मिल गया लेकिन भक्ति नहीं छोड़ सकते, पता नहीं गुरु जी का श्राप मिल जाए क्या करेंगे, कुछ हो जाएगा। तो कई ऐसी अभी तक आत्माएं दोनों तरफ अधर में लटकी रहती, न भक्ति छोड़ सकती न ज्ञान में आ सकती, क्या करूं प्रश्न होता है। अगर छोड़ दूं कहीं तो फिर ये देवता ये देवी ये हमारे इष्ट नाराज न हो जाए, हमारे घर में पता नहीं कुछ कलह हो जाए, हमारे बिजनेस में घाटा हो जाए, ऐसी आत्माएं कौन होती है। नेगेटिव सोचें, संपूर्ण निश्चय नहीं है कि भगवान हमको मिल गया, हमको इस भक्ति का फल मिल गया, भक्ति का फल ज्ञान मिल गया और ज्ञान सागर के द्वारा ज्ञान मिल गया। अब जिसको ज्ञान सागर स्वयं मिल गया, सर्वशक्तिमान मिल गया, उसको दो नाव में पांव रखने की क्या जरूरत है। दो नाव में पांव रखोगे तो क्या हाल होगा। इसलिए बाबा ने हम सबको कहा बच्चे भक्ति छुड़ाओ नहीं, भक्ति अच्छी चीज है। छुड़ाया नहीं बाबा ने किसी की, लेकिन कहा यह है भावना, सिर्फ उसमें विवेक ऐड करो। भावना तो याद में भी चाहिए, योग में भी अगर भावना ना हो, अगर आप बाबा को याद करो और आपकी भावनाएं ना हो तो बाबा तक याद पहुंचेगी। बाबा तो कहता मैं भावना का भूखा हूं, मैं प्यार का भूखा हूं और कुछ मुझे नहीं चाहिए। बच्चे जितनी भावना से याद करते, जिसने दिल से याद करते, प्यार से याद करते हैं, उनकी याद मेरे तक पहुंचती है। बाकी सिर्फ ज्ञान सुनता, अगर विवेक है बुद्धि है, मैं आत्मा हूं मैं परमात्मा की संतान हूं, तो ऐसे युद्ध करता रहता योग में बैठ, बाबा तक पहुंचता नहीं, उसकी याद नहीं पहुंचती, शक्ति नहीं मिलती, क्योंकि वो केवल दिमाग से याद कर रहा है, ज्ञान का चिंतन कर रहा है, योग नहीं है। और भावना वाली आत्माएं बहुत दिल से बाबा कहती, मेरा बाबा मेरा बाबा मुझे मिल गया, बस उस प्यार में समा जाती है और बाबा की शक्तियों का अनुभव कर लेती। भावना तो चाहिए ना, तो भक्ति भावना थी लेकिन वो अंधश्रद्धा वाली भावना थी। अभी ज्ञान मिल गया तो विवेक वाली भावना हो गई, समझ से भावना है, भावना है, भावना टूटी नहीं है। अगर भावना ही टूट जाएगी तो ज्ञान मिलने से कोई फायदा नहीं, लेकिन वो भक्ति वाली भावना नहीं है, परिचय नहीं है, कौन है, कब पैदा हुआ, कब आया, आज श्री कृष्ण की जन्माष्टमी मना रहे हैं, वो इतिहास पता ही नहीं है किसी। भावना बहुत है, देखो रात भर जागेंगे, रात को 12 बजे मटकी तोड़ेंगे, क्या क्या करेंगे, मक्खन चोरी करेंगे, श्री कृष्ण की कैसी कैसी बातें बना करके, ये चरित्र है, ये चरित्र है, ये चरित्र है, क्या क्या भगत करेंगे नाटक रात भर दिन भर करेंगे। लेकिन पूछो ये क्यों किया था, ऐसा क्यों भगवान ने किया, क्या जरूरत थी उनको मटकी चोरी करने की, क्या जरूरत थी उनको मक्खन चोरी करने की, साहूकार इतना राजाओं का राजा वैकुंठ नाथ, उसके पास क्या जरूरत कमी थी जो इसको मटकी घरों में जाकर के गोपियों की चोरी करेगा, किसी की दही चुराएगा, मक्खन चुराएगा, क्यों करेगा। अभी ज्ञान नहीं, समझ नहीं, बाबा ने हम बच्चों को बहुत प्यार से समझा दिया, बच्चे कौन सा मक्खन चोरी किया, अरे ज्ञान का मक्खन चोरी कर लिया, ज्ञान का मक्खन आत्मा ने खा लिया और उसको विश्व का गोला विश्व का मक्खन मिल गया। तो आध्यात्मिकता जो थी वो एक साकार रूप में एक स्थूल रूप में भक्तों ने बनाई और उसको पूज रहे हैं। और बाबा ने बहुत सुंदर ज्ञान दे करके, स्पष्ट ज्ञान दे करके हमारी बुद्धि को भटकने से बचा, भटकते नहीं, यथार्थ जानते हैं। इसलिए भक्ति है, भक्ति माना भावना है, लेकिन अंधश्रद्धा वाली भक्ति नहीं, बहुत समझ से ज्ञान से सारा इतिहास मालूम है, ये कौन है, इसके हाथ में कौन सा गोला है। तो हम सभी अगर बहुत भावना युक्त बाबा को याद करते हैं तो हमारा बंधन अपने आप कट जाता है। देह में रहते हुए भी हम देह से डिटैच हो जाते हैं, क्योंकि जैसा बाबा वैसा मैं, बाबा विदेही है, बाबा को देह नहीं है। तो हम आत्मा बन करके बाबा को याद करते हैं, विदेही स्थिति का अनुभव करते हैं, बंधन मुक्त बन जाते हैं। और फिर कर्म में आते हैं तो कर्तापन का भान नहीं, बाबा ने कहा कर्म क्षेत्र है ये, कर्म से तो कोई छुटकारा मिलता ही नहीं, किसी को भी नहीं मिलता। सन्यासी कई लोग कहते हैं हम कर्म सन्यासी हैं, बाबा कहता कर्म सन्यास हो सकता है, कभी हो सकता है, चलो अपने हाथ से रोटी नहीं बनाता है वो, जो कोई ने दिया खा लिया, वो कहता मैं कर्म सन्यासी हूं, मैं कुछ करता नहीं, खाता तो है, खाने का कर्म करता है, बोलता है, बोलने का कर्म करता है, सांस लेता है तो सांस लेने का कर्म करता है, तो ये कर्म क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र में कर्म के बिना कोई रह सकता है? तो बाबा कहता है ये कर्म संन्यास नहीं होता, ये शब्द ही रांग है। कर्म क्षेत्र है और कर्म तो करना ही है, लेकिन कर्म बंधन बन गया है, उस बंधन से मुक्त होना है तुम्हें, ठीक है? तो बंधन नहीं बनाना, कर्म करो, लेकिन ऐसे नहीं कर्म के बिना इसके बिना मैं रह ही नहीं सकता, किया और बाबा को सौंप दिया। कर्तापन नहीं है, मैंने किया, मैं करता हूं, मेरे जैसा कोई नहीं करता। अगर ये संकल्प आ गया कि मैं सबसे अच्छा करता हूं, मेरे जैसा कोई नहीं करता, अगर मैं नहीं करूं तो ये काम ही रुक जाएगा, तो क्या कहेंगे इसको? ये बंधन है, वो फिर दुख देगा, क्योंकि वो काम जब नहीं होगा या कोई गलत हो जाएगा तो आपके संकल्प नेगेटिव चलेंगे या करने की शक्ति नहीं रहेगी। इसलिए बाबा कहता जो कुछ तुम करते हो मुझे अर्पित कर दो, समर्पित कर दो, कर्तापन में नहीं आओ, मैंने किया, मैं करता हूं, मेरी विशेषता, विशेषताएं तुम्हारी कहां है? बाबा ने तुमको दी, तुमने कर लिया, बस बाबा को दे दो, सौंप दो। तो अगर हम जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करना चाहते हैं तो पहले है आत्मिक स्थिति का अभ्यास, भावनापूर्ण योग और कर्तापन के भान से मुक्त। करो सब कुछ, छोड़ो कुछ नहीं, सब कर्म करो, कोई कर्म छोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन कर्म में बाबा की याद, कर्म योग का बैलेंस। और चौथी बात है जितना न्यारे उतने प्यारे, ऐसे प्यारे नहीं बन जाओ जो फंस जाओ एक दूसरे में, मोह ममता की रस्सियां बना लो। आज प्यार क्या हो गया? मोह ममता की रस्सी बन गई, बांध रही है बच्चों का, पति का, धोत्रों में, पोत्रों में, कितने लोगों में बंधन बंध गया। अब बाबा क्या कहता है कि इन बंधनों से मुक्त बनो, न्यारे बनो और प्यारे बनो। पहले न्यारे बनना फिर प्यारे बनना, प्यारे बन करके न्यारे नहीं बनना, बुद्धि से न्यारे बन जाओ। ये सब मरे पड़े बाबा कहते हैं, ये सब पाठधारी हैं, आज के पाठधारी हैं, कल नहीं होंगे। आज इसके घर में आज ये इसको कहते पति है और कल ये शरीर छोड़ जाएगा, दूसरा कोई पति बनेगा क्या? दूसरे घर में जाकर के किसी का बच्चा बन जाएगा? तो हम सभी संबंधों के बंधन बना चुके, बंधन है, ये मेरा है, ये मेरा है, मेरा है। और बाबा कहता तेरा कोई नहीं है, तुम तो पार्टधारी, आज पार्ट मिला है, आज शरीर में है, पार्ट बजा रहा है, इसको छोड़ेगा, दूसरे पार्ट में चला जाए। इतना स्पष्ट ज्ञान बाबा ने दिया जो बंधन न बने, लेकिन अगर मेरा मेरा कहा तो फिर बंधन का घेरा उसके साथ साथ। और अगर तेरा कर दो, बाबा ये सब तेरा है, मेरा कुछ नहीं है, तो बंधन अपने आप कर लिया। तो जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए जो कुछ मेरा मेरा है वो सब बाबा को सौंप। कभी नहीं कहना ये मेरा है, मेरा बच्चा है, मेरा परिवार है, मेरा घर है, मेरी दुकान है। हमारे विदेश में पता आजकल क्या नियम है, विदेशी बाबा के बच्चे जितने ज्ञान में चलते हैं कहेंगे बाबा की गाड़ी है, ये बाबा का घर है, ये बाबा का कमरा है, ये बाबा का ऑफिस है, ये बाबा की दुकान है, कभी अपना नहीं कहेंगे। अभ्यास ही ऐसा कर लिया है, हर बात में बाबा शब्द लगा देंगे, बाबा का है। तो बाबा की गाड़ी में बैठेंगे आप, कहेंगे बाबा की गाड़ी कहाँ है, ये तो इसकी गाड़ी है, लेकिन वो कभी नहीं कहेगा ये मेरी गाड़ी है। एक अभ्यास कर लिया है जिससे बाबा की याद तो बनी रहे, बाबा ने गाड़ी दी है, बाबा ने मकान दिया है, बाबा ने परिवार दिया है, बाबा ने दुकान दी है, जो कुछ है सब बाबा। इतना अगर बुद्धि से समर्पित कर दो, अपनापन नहीं, मेरापन नहीं, मैं उसमें फंस न जाऊं, तो जीवन मुक्त स्थिति का अपने आप आनंद ले सकते, मौज का अनुभव, खुशी का अनुभव होगा। नहीं तो बंधन काटते रहेंगे, बांधते रहेंगे अपने आप। तो हम सबके बीच में रहते, संसार में रहते, हर कर्म करते क्या करें, जीवन मुक्त स्थिति का अभी अनुभव करें, भविष्य में नहीं। भविष्य तो जीवन मुक्त होंगे ही, क्योंकि बंधन है ही नहीं, संबंध भी बहुत थोड़े हैं, आज कितने लंबे चौड़े संबंध होते हैं, और वहां पर संबंध भी बहुत थोड़े हैं, एक बच्चा एक बच्ची, इसलिए कोई ज्यादा संबंधों में बंधन नहीं है। और यहां पर आत्माएं तो इतने बंधनों में बंधी हुई है जो उनसे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल। इसलिए बाबा कहता है कि जो पुराने बंधन है उनको काटो और नया बंधन बनाना नहीं, क्योंकि बंधन मुक्त बन करके वापस जाना है। अगर कोई बंधन रह गया तो वापस नहीं जा पाओगे, जाना तो पड़ेगा, सजाएं खानी पड़ेंगी। इसलिए बाबा कहता बच्चे सजाएं खा करके मेरे बच्चे आएंगे तो बाबा को भी लज्जा आएगी, अरे मेरे बच्चे सजाएं खा रहे हैं। तो बाबा को भी कभी ऐसा ना सोचना पड़े कि मेरे बच्चे होकर के क्यों सजाएं खाते। इसलिए बाबा अभी अपने बच्चों को कहता, बच्चे कोई भी बंधन हो, मन का बंधन हो, संस्कारों का बंधन हो, स्वभाव का बंधन हो, जाति का बंधन हो, कुल का बंधन हो, गुरुओं का बंधन हो, भक्ति का बंधन हो, देह का बंधन हो, तो देखना अपने बंधन, ठीक है, और इन बंधनों को काट देना। जीवन मुक्त जिस श्री कृष्ण समान बनना है, तो अगर श्री कृष्ण पुरी का आनंद लेना है, स्वर्ग में चलना है, तो बाबा कहता सतयुग के पहले संगम युग पर वैसी स्थिति का अनुभव करो जैसा बनना चाहते हो। तो हम अभी क्या करेंगे, अपनी स्थिति को जीवन मुक्त स्थिति बनाए, बहुत निर्बंधन, कोई बंधन नहीं, बाबा को जो बंधन हो सौंप दो, लेने के लिए तैयार है, लेकिन देने वाले दिल से दे दें। निर्बंधन बन करके बाबा को प्यार से याद करो और फिर अर्थ सहित जन्माष्टमी मनाना, ठीक है। मधुबन की जन्माष्टमी तो रौनक वाली होती है ना, अपने आप में नवीनता होती है, सभी देखेंगे, भोग लगेगा, फिर शाम को झांकियां सुंदर सुंदर म्यूजियम में बनाई जाएंगी, बहुत अच्छी अच्छी, तो भी देखने का भाग्य मिलेगा, और आत्मा का भी आह्वान करते हैं, अगर आ गई तो भी पार्ट देख लेंगे। कल 7 बजे से 7:30 बजे तक योग होगा, कल सवेरे मुरली का क्लास 7:30 शुरू होगा। आप कहेंगे क्यों इतनी लेट होगा, क्योंकि नीचे शांति वन में 500 समर्पित भाई आए हुए सेंटर्स पर रहने वाले, वो सब ऊपर आएंगे, और दादी जी भी नीचे हैं शांति वन में, तो भी नीचे से ऊपर आएंगे। तो जब दादी जी यहाँ आ जाएंगे, 8 बजे के बाद भोग लगेगा, भोग के बाद जो भी संदेश होगा या श्री कृष्ण का पाठ चलेगा, डांस करेंगे सभी गोप गोपियां, वो पाठ चलेगा और हम सभी देखेंगे, ठीक है। तो कल 7 से 7:30 योग, 7:30 से 8:15 तक मुरली, फिर भोग, दादी जी से मिलन, संदेश, कल हम सभी यहाँ पर जन्माष्टमी मनाएंगे। ओम शांति।
दिल का